देखिए भाई आगे सबक फइन तज़व्वज उख्तैनि फी अक़दतैनि वला यदरी अय्यतहुमा उला फुर्रिका बैनहु व बैनहुमा लिअन्न निकाह इहदाहुमा बातिलुम बियकीनि वला वजह इलत तायीनि लिअदमिल औलविय्यह वला इलत तन्फीदि मअत तजहीलि लिअदमिल फाइदति औलिल ज़रर फतअय्यनत तफरीक वलहुमा निस्फुल महर। भाई गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि इंसान पर उसकी रिजाई मां भी हराम है और रिजाई बहन भी हराम है। भाई अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वो उम्महातुकुम उल्लाती अरज़ानकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ा, और इसी तरह हदीस जिक्र फरमाई थी साहिब हिदाया ने कि यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, के रजाअत से भी वो औरतें हराम हो जाती हैं जो नसब की वजह से हराम होती हैं। और इस सिलसिले में मैंने आपको एक शेर लिखवाया था कि अज जानिब शीरदह हामा खै शबंद व अज जानिब शीर खार जौजान फुरुअ। शीरदह दूध पिलाने वाली, अज जानिब शीरदह दूध पिलाने वाली की तरफ से हामा खै शबंद सब रिश्तेदार बन जाते हैं, वह अजानिब शीर खार जौजान फुरो और दूध पीने वाले की तरफ से मियां बीवी और उनकी जो औलाद है। मैंने बतलाया था कि जो दूध पिलाने वाली है वो है मुर्जिया, और जिस बच्चे ने दूध पिया है वो है रजिया। भाई तो मुर्जिया की तरफ से सब रिश्तेदार बन जाते हैं, यानी वो दूध पिलाने वाली औरत इस बच्चे की मां बन गई और उस औरत का जो खावंद है वो इस रजिया का रिजाई बाप बन गया, और ये रिजाई मां बाप की जो औलाद है वो इस रजिया के लिए रिजाई भाई बहन बन गए। भाई और इसी तरह ये जो मुर्जिया और इसका खावंद है इनके जो उसूल हैं वो इस रजिया के लिए रिजाई दादा दादी और रिजाई नाना नानी बन गए। भाई तो दूध पिलाने वाले की तरफ से सब रिश्तेदार बन जाते हैं और दूध पीने वाले की तरफ से मियां बीवी और उनकी औलाद। मसलन अगर दूध पीने वाला लड़का है और फिर जब ये बाद में बड़ा होकर निकाह करेगा तो जैसे ये रिजाई मां बाप हैं इसके, तो ये जो लड़का है इसकी बीवी वो इनके लिए बहू बन जाएगी। भाई और जैसे हकीकी बेटे की बहू इंसान पर हराम होती है इसी तरह रिजाई बेटे की बहू भी इन पर हराम है। और अगर ये दूध पीने वाली लड़की है तो ये जब बाद में किसी से निकाह करेगी तो वो लड़का जो है वो आदमी इनका दामाद बन जाएगा। भाई और जैसे दामाद पर हकीकी सास जो है वो हराम होती है इसी तरह रिजाई सास भी इस दामाद पर हराम होगी। भाई ये रजिया ये लड़का है तो इसकी बीवी, और अगर ये लड़की है तो इसका खावन, ये उन पर हराम है। इसी तरह ये रजिया की जो औलाद है वो भी इन पर हराम है। जैसे हकीकी बेटा हो या हकीकी बेटी हो उनकी औलाद जैसे इंसान पर हराम होती है इसी तरह ये जो रिजाई बेटा या रिजाई बेटी है इनकी औलाद भी इंसान पर हराम होती है। भाई और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि कोई शख्स दो बहनों को जमा नहीं कर सकता निकाह के एतबार से, और इसी तरह दो बहनों को मिलके यमीन के अंदर वती के एतबार से ये जमा करना जायज नहीं है। एक ही शख्स दो बहनों से निकाह कर ले ये जायज नहीं है। मसलन एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है और अब वो उस अपनी बीवी की बहन से निकाह करना चाहता है तो उसकी कोई सूरत नहीं है। भाई निकाह करेगा भी तो वो निकाह होगा ही नहीं। भाई उससे निकाह करना चाहता है तो पहले इस औरत को अपने निकाह से निकाल दे तो फिर इसके लिए उस औरत से निकाह जायज होगा, यानी बीवी की बहन से फिर निकाह जायज होगा। और इसी तरह दो बहनों को मिलकर यमीन के अंदर वती के एतबार से जमा करना भी जायज नहीं है। वैसे तो दो बांदियां हैं, मसलन एक शख्स की दो बांदियां हैं और वो दोनों आपस में बहने हैं, तो दो बहने एक ही शख्स की बांदियां हों ये तो जायज है, लेकिन दोनों को वती के एतबार से जमा नहीं कर सकता। अब यानी अगर इन दोनों में से वो एक से सोहबत करता है तो दूसरी के साथ उसके लिए सोहबत जायज नहीं होगी। भाई हाँ, अगर दूसरी के साथ ये सोहबत करना चाहता है तो फिर पहली वाली जो है उसको अपने ऊपर हराम करना पड़ेगा कि उसको बेच दे या किसी और को इसका मालिक बना दे, किसी और को इस बांदी के कुल का मालिक बना दे या इसके जुज का मालिक बना दे या इस बांदी का किसी और से निकाह करवा दे। और मैंने आपको बतलाया कि वो बांदी जो मुश्तरक हो कई अफराद में तो किसी एक के लिए भी उससे सोहबत जायज नहीं है। सिर्फ उस बांदी से सोहबत जायज है कि जो पूरी की पूरी एक ही शख्स की ममलूका है, तो उस आका के लिए उससे सोहबत जायज है। और नीज मैंने यह भी बताया था कि बांदी का जब किसी से निकाह करवा दिया जाए तो भी ये बांदी अब सिर्फ खावंद के लिए हलाल है, अब अपने आका के लिए उससे सोहबत करना जायज नहीं है भाई। और मैंने सूरत जिक्र की थी कि मसलन एक शख्स है, उसकी मिल्कियत के अंदर दो बहनें हैं भाई, और उसको मसले का पता नहीं था, उसने दोनों के साथ सोहबत कर ली तो वो जामिअ बैनल उख्तैन हो गया, उसने वो दो बहनों को जमा करने वाला हो गया वत अन बैतबार वती के, और इससे तो शरीयत ने मना किया है, ये तो हराम है भाई। लिहाजा अब इस पर दोनों बहनें हराम हो गईं, अब दोनों में से किसी एक के साथ भी वती जायज नहीं है, इल्ला ये कि इन दो बहनों में से एक को अपने ऊपर हराम कर ले। किस तरह हराम करेगा? जिस तरह भी चाहे हराम कर ले, चाहे एक बहन को बेच दे तो जब कोई दूसरा मालिक बन जाएगा तो अब इसके लिए हलाल नहीं, या किसी और को इसका मालिक बना दे, कुल का मालिक बना दे या जुज का मालिक बना दे, इसी तरह जो बेचा है चाहे कुल को बेच दे चाहे जुज को बेच दे या इस बांदी का किसी से निकाह करवा दे। तो जब एक बांदी को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो अब इस बांदी की जो बहन है अब आका के लिए हलाल हो गई। सूरत समझ में आ गई? और फिर मैंने बतलाया था कि जो मनकूहा होती है जिसे कोई शख्स निकाह कर लेता है, इसको भी हुक्मन मौतुआ करार दिया जाता है, गोया ये शख्स इससे वती कर चुका है। ये जो मनकूहा है इसको भी हुक्मन क्या करार दिया जाता है? मौतुआ, यानी खावंद इसे सोहबत कर चुका है, अगरचे उसने अभी सोहबत की नहीं लेकिन फिर भी वो मौतुआ है हुक्मन भाई। तो कोई शख्स जब किसी औरत से निकाह करता है, अभी उसने बेशक उससे सोहबत नहीं की अपनी बीवी से, लेकिन यह हुक्मन मौतुआ है, यानी इस पर भी हुक्म लगा दिया गया कि गोया यह इससे सोहबत कर चुका है। जबकि बांदी जो है उसका जब कोई शख्स मालिक बनता है तो उस आका के लिए बांदी से सोहबत हलाल हो जाती है, लेकिन वो बांदी हुक्मन मौतुआ नहीं है जब तक कि वो शख्स यानी आका उससे सोहबत हकीकतन न कर ले। जब हकीकतन सोहबत कर लेगा तो अब ये बांदी इसकी मौतुआ हो गई। तो सवाल पैदा होता है कि किसी औरत से निकाह किया जाए तो वो हलाल हो जाती है, इसी तरह किसी बांदी का जब इंसान मालिक बनता है तो बांदी भी हलाल हो जाती है। तो दोनों औरतें हलाल हो रही हैं, लेकिन एक को हुक्मन मौतुआ करार दिया गया और दूसरी को हुक्मन मौतुआ करार नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है, ये फर्क क्यों किया गया? तो मैंने बतलाया था कि वजह यह है कि किसी औरत से जब निकाह किया जाता है तो निकाह का मकसद ही यह होता है कि औरत उस निकाह करने वाले के लिए हलाल हो जाए, इसके लिए उससे सोहबत करना जायज हो जाए। तो चूंकि निकाह के जरिए मकसूद ही वती है, लिहाजा इसलिए इस ये जो मनकूहा है इसको मौतुआ करार दिया जाएगा, यानी यह हुक्म उस पर लगाया जाएगा। हुक्मन का क्या माना, यानी ये उस पर हुक्म लगा दिया जाएगा कि ये इसकी मौतुआ है, अगरचे अभी तक उस खामंद ने सोहबत न की हो भाई। जबकि बांदी को तो भाई सोहबत के लिए नहीं खरीदा जाता, उसको तो कामकाज और खिदमत के लिए खरीदा जाता है। हां, जिमनन वो बांदी जो है मालिक के लिए हलाल भी हो जाती है, तो बांदी जो है वो वती के लिए उसको नहीं खरीदा जाता, लिहाजा उसको हुक्मन मौतुआ करार नहीं दिया जाएगा। इल्ला ये कि आका उसे हकीकतन सोहबत कर ले तो अब ये उसकी मौतुआ बन गई। बात समझ में आ गई? तो मसला जिक्र किया था साहिबे हिदाया ने कि एक शख्स है, उसकी मिल्कियत में एक बांदी है और ये इससे सोहबत कर चुका है, अब ये शख्स इस बांदी की बहन से निकाह करना चाहता है। मसलन इस बांदी की बहन आजाद है, उसको किसी ने आजाद कर दिया था, या किसी की ममलूका है लेकिन उस आका की इजाजत के साथ ये वाला शख्स उससे क्या करना चाहता है, निकाह। तो सूरत है मसला यह कि एक शख्स की बांदी है, ममलूका है, और यह इसे सोहबत कर चुका है और अब यह इसकी बहन के साथ निकाह करना चाहता है, तो याद रखो फुकाहा फरमाते हैं कि इस बांदी की बहन के साथ निकाह जायज है, इसके साथ निकाह जायज है, इसलिए क्योंकि दो बहनों को वती के एतबार से जमा करना भी मना और निकाह के एतबार से भी जमा करना मना है। तो ये जो एक बांदी है जो इसकी मिल्कियत में है वो तो इसकी बांदी है, उसके साथ तो इसने कोई निकाह नहीं किया हुआ, तो दूसरी के बहन के साथ जब निकाह करेगा तो ये निकाह के एतबार से दो बहनों को जमा करने वाला नहीं हुआ, तो ये लिहाजा उसे निकाह कर सकता है, तो ये निकाह कर ले, लेकिन जैसे ही निकाह करेगा ये औरत इसकी मनकूहा बन गई, और मनकूहा क्या होती है, हुक्मन मौतुआ होती है, बांदी तो इसकी हकीकतन मौतुआ है और ये जो बांदी की बहन से जो निकाह किया वो हुक्मन मौतुआ हो गई, तो ये शख्स जामिअ बैनल उख्तैन हो गया वती के एतबार से, इसने दो बहनों को जमा कर दिया वती के एतबार से। बात समझ में आ रही, अगरचे एक मौतुआ है हकीकतन और एक मौतुआ है हुक्मन, लेकिन है तो दोनों मौतुआ और शरीयत ने तो दो बहनों को वती के एतबार से जमा करने से मना फरमाया है, और मैंने वो सूरत जिक्र की थी, अगर एक शख्स की मिल्कियत ने दो बहनें हैं और दोनों से उसने लाइल्मी में सोहबत कर ली तो दोनों उस पर हराम हो जाएंगी। यहां पर भी ये शख्स जो है क्या बन गया, जामिअ बैनल उख्तैन हो गया वती के एतबार से, अगरचे एक हकीकतन मौतुआ है और एक हुक्मन, लेकिन है तो दोनों मौतुआ, और जब दोनों बहनें मौतुआ हो तो दोनों हराम हो जाती हैं, एक के साथ भी सोहबत जायज नहीं होती इल्ला ये कि दोनों में से एक को अपने ऊपर हराम कर ले। तो यह शख्स भी क्या करेगा, या तो इस जिससे निकाह किया है इसी को छोड़ दे, जब तलाक देगा तो यह मनकूहा हराम हो गई, अब वो बांदी के साथ सोहबत इसके लिए फिर जायज हो गई, या इस बांदी को अपने ऊपर हराम कर ले, यानी ये पूरी बांदी किसी को बेच दे या इसका जुज किसी को बेच दे या इस बांदी का किसी से निकाह करवा दे, तो जब ये बांदी इस पर हराम हो जाएगी तो अब इसकी जो मनकूहा है वो इसके लिए हलाल हो जाएगी। सूरत समझ में आ रही है। अब आइए आज के सबक पर, कहते हैं फईन तजव्वज उख्तैनी फी अक्दतैनी वला यदरी अय्यतहुमा उला फुर्रिक बैनहू व बैनहुमा। भाई गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा कि दो बहनों को निकाह के एतबार से भी जमा करना जायज नहीं और वती और सोहबत के एतबार से भी जमा करना जायज नहीं, लिहाजा एक शख्स के निकाह में एक औरत है और वो उसकी बहन से निकाह करना चाहता है तो निकाह होगा ही नहीं, ये आकद करे भी तो वह आकद क्या है, बातिल है, वो निकाह हो गई नहीं, जब तक ये इस पहली बहन को अपने निकाह से निकालेगा नहीं दूसरी बहन के साथ ये निकाह नहीं कर सकता। सूरत समझ में आ रही है। अब एक शख्स है उसने दो बहनों से निकाह किया दो अलग अलग आकदों में, और इस सूरत में मसला क्या है कि जिससे पहले निकाह किया उसके साथ तो निकाह ठीक हो गया, लेकिन दूसरी बहन से निकाह करेगा तो ये क्या बन जाएगा, जामिअ बैनल उख्तैन, और शरीयत ने तो इसकी इजाजत नहीं दी, लिहाजा ये दूसरा निकाह मुनाकिद ही नहीं हो, ये दूसरा निकाह बातिल है। जब एक बहन से निकाह कर चुका है तो दूसरी बहन से निकाह हो गई नहीं, वो निकाह क्या है, बातिल है। अब एक शख्स ने दो बहनों से निकाह किया है और अलग अलग आकद में किया है, पहले एक बहन से निकाह किया फिर दूसरी बहन से निकाह किया, लेकिन भूल गए कि किस बहन से पहले निकाह हुआ था और किस बहन से बाद में निकाह हुआ है, तो इस सूरत में पहली बहन के साथ जो निकाह हुआ वो तो ठीक हो गया, वो तो इसकी जौजा बन गई, लेकिन दूसरा निकाह बातिल है। लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि कौन सी बहन के साथ पहले निकाह किया था, कौन सी वाली इसकी बीवी है और कौन सी वाली इसकी बीवी नहीं है। साहिब हिदाया यहां दो अकदों की कैद लगाएंगे कि दो अलग अलग अकदों में बहनों से निकाह किया है, वजह यह कि एक ही अकद के अंदर दो बहनों से अगर निकाह करेगा तो वो तो एक भी निकाह नहीं होगा, वो निकाह ही बातिल है। भाई मसलन एक शख्स को कहा जाता है कि फुला और फुला दो बहनें हैं, उन दोनों को आपके अकद में दे दिया और ये कहता है मैंने कबूल कर लिया, एक ही इजाब और कबूल के साथ दोनों बहनों से निकाह कर रहा है, तो याद रखो इस सूरत में ये निकाह बातिल है, एक भी निकाह नहीं होगा क्योंकि दो बहनों को एक निकाह में जमा करना जायज नहीं। हां अगर अलग अलग बहनों से निकाह करेगा तो फिर पहली वाली के साथ निकाह मुनाकिद हो जाएगा और दूसरी वाली का निकाह बातिल होगा, लेकिन यहां जो दो بہنیں ہیں، اب یہاں پتہ ہی نہیں کہ کون سی بہن کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا اور کون سی بہن کے ساتھ بعد میں نکاح ہوا ہے، تو صاحب ہدایہ بتائیں گے کہ یہاں اب اور کوئی صورت نہیں ہے کہ پتہ چل سکے کہ کس بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تعین بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اس کو چلنے دیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ان میں جدائی ہی کروانا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی؟ ایک شخص نے دو بہنوں سے نکاح کیا دو الگ الگ عقدوں میں اور پھر بھول گئے کہ کس بہن سے پہلے نکاح ہوا تھا اور کس بہن سے بعد میں نکاح ہوا تھا اور وہاں تعین کی کوئی صورت نہیں، تو دونوں بہنوں سے اس کی جدائی کروا دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر، فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ، اگر کسی شخص نے نکاح کیا دو بہنوں سے، فی عَقْدَتَيْنِ، دو عقدوں میں، میں نے بتایا یہ قید ضروری ہے، ایک ہی عقد میں دونوں سے نکاح کرے گا تو پھر تو ایک سے بھی نہیں ہوگا، تو لیکن یہاں دو عقدوں میں کیا تو پہلی سے نکاح ہو جائے گا اور دوسری سے نہیں ہوگا، لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس سے پہلے کیا ہے اور کس سے بعد میں، تو کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ، اگر کسی شخص نے نکاح کیا دو بہنوں سے دو عقدوں میں، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا أُولَى، اور وہ شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے پہلی کون سی ہے کہ جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، تو اس مرد اور دو بہنیں جو ہیں ان میں جدائی کروا دی جائے گی، لِأَنَّ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ، اس لیے کیونکہ دونوں بہنوں میں سے ایک کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے، بھئی پہلی کا تو نکاح ہو گیا اور دوسری کا تو یقینی طور پر باطل ہے، لیکن کون سی والی بہن کا نکاح باطل ہے اب یہ پتہ ہی نہیں، تو کہتے ہیں لِأَنَّ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ، اس لیے کیونکہ دونوں بہنوں میں سے ایک کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے، وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ، اور تعین کا بھی کوئی راستہ نہیں، تعین کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ، کیونکہ اولا کا معنی زیادہ لائق، کیونکہ اولویت یہاں نہیں ہے، یعنی ترجیح نہیں ہو سکتی، کس کو ترجیح دیں؟ توجہ ہے جی، دو بہنوں سے الگ الگ نکاح کیا ہے، دونوں میں سے پہلی کا تو نکاح ہو گیا اور دوسری کا باطل، لیکن پتہ نہیں کون سی والی کا نکاح ہوا ہے اور کون سی والی کا باطل، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے پہلا نکاح کون سا تھا اور دوسرا نکاح کون سا تھا، تو اب دوسرا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے لیکن اس کی تعین نہیں ہو رہی، کون سا والا نکاح باطل ہے، تعین نہیں ہو سکتی، یہ معنی ہے، ولا وجہ الى التعین، وجہن کا معنی یہاں راستے کے کر لیں یا صورت کے کر لیں، ولا وجہ الى التعین، اور تعین کی کوئی صورت نہیں، تعین کا کوئی راستہ نہیں، لعدم الاولویتی، کیونکہ ترجیح معدوم ہے، ترجیح کی کوئی صورت نہیں، بھئی آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو شریعت نے تحری کا حکم دیا ہے کہ تحری کر لیں، یعنی غور و فکر کر لیں، اور جس طرف آپ کا غالب گمان ہو جائے کہ اس طرف کو قبلہ ہے تو آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو گئی جی۔ بعد میں اگر کوئی شخص آپ کو آ کر بتلا بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ نے تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور قبلہ تو مشرق کی طرف ہے، بالکل الٹی طرف، لیکن یاد رکھو آپ کی نماز ہو گئی، بھئی جس وقت آپ نے نماز پڑھی تھی اس وقت کوئی آس پاس بتانے والا نہیں تھا، تو اس وقت شریعت نے تحری کا حکم دیا تھا اور آپ نے شریعت کے حکم پر عمل کر لیا، غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ایک جانب رخ کر کے جس طرف آپ کا غالب گمان تھا اس طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، تو آپ کی نماز ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو بیویوں میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، پتہ نہیں چل رہا تو تحری کر لیں، کیا کر لیں، غالب گمان کر لیں یہ والی حلال ہوگی بھائی اور یہ والی حرام، نہیں بھائی، تحری سے کوئی عورت حلال نہیں ہو سکتی کسی آدمی کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہاں حقیقتاً پتہ چلنا ضروری ہے کہ کس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا، اور تعین کی تو کوئی صورت نہیں ہے، لعدم الاولویتی، ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے بھائی، ولا الى التنفیذ مع التجہیل لعدم الفائدتی او للضرر، تنفیذ کا معنی ہے نافذ کرنا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک نکاح کو نافذ کر دیا جائے، دونوں میں سے ایک تو ہوا ہے نا، پہلا نکاح تو منعقد ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ پہلا تھا کون سا والا جی، कौन सी बहन के साथ पहले निकाह हुआ था यह पता नहीं चल रहा, तो इसी तरह इस निकाह को नाफिस कर दिया जाए। मा तजहील जहला युजहिलु, तजहील का माना है मजहूल करार देना, तजहील का क्या माना है मजहूल करार देना। वला इलत तनफीजी मा तजहील, भाई ये तर्जमा समझ लें, तायीन की भी कोई सूरत नहीं, वला इलत तनफीजी और एक निकाह को नाफिस कर दिया जाए मा तजहील मजहूल करार देने के साथ कि दो बहनों में से एक का निकाह नाफिस है लेकिन कौन सी वाली का नाफिस है यह पता नहीं, यानी ला अल तायीन एक निकाह को नाफिस कर दिया जाए। ला अल तायीन एक निकाह को नाफिस कर दिया जाए कि भाई इसी तरह चलने दो, दोनों में से एक से निकाह हो चुका है आपका लेकिन हुआ किससे है यह पता नहीं है, तो इसी तरह इसको नाफिस कर दिया जाए मजहूल करार देते हुए यानी बगैर तायीन के। कहते इसकी भी कोई सूरत नहीं है, वजह यह कि इसमें किसी का फायदा नहीं, ना उस मर्द का फायदा ना औरतों का फायदा। मर्द का फायदा नहीं क्योंकि उसने तो निकाह किस लिए किया था कि बीवी हलाल हो जाए उससे सोहबत कर सके, और अब तो यहां पता ही नहीं है दो बहनों में से उसकी बीवी कौन सी है भाई, तो सोहबत का फायदा भी नहीं और फिर आगे औलाद का सिलसिला भी नहीं चल सकता भाई, जब बीवी का ही पता नहीं है सोहबत ही नहीं जायज तो औलाद कैसे हासिल होगी। और नीज औरतों का भी कोई फायदा नहीं है, देखो औरत भी निकाह किस लिए करती है कि उसका घर बस जाए उसको औलाद हासिल हो जाए, तो जब खावत सोहबत ही नहीं कर सकता इन दोनों में से किसी के साथ क्योंकि तायीन नहीं है तो फिर औलाद भी हासिल नहीं, तो फायदा ही कोई नहीं इस निकाह को इसी तरह नाफिज करने का। और या इसलिए कहें इन निकाह नाफिज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें नुकसान है भाई दोनों का, दोनों का नुकसान है, खावन पर बीवी का नफका होता है भाई तो उसको नफका देना पड़ेगा और सोहबत वो कर नहीं सकता और नफका उसको देना पड़ेगा, यानी एक नफका तो देना पड़ेगा ना, दोनों को तो नफका नहीं देगा क्योंकि दोनों तो बीवियां नहीं है, दोनों में से एक ला अलत तायीन उसकी बीवी है तो एक का तो नफका उसको देना पड़ेगा, वो फिर चाहे उसको तकसीम करें या जैसे भी करें, लेकिन बहरहाल खावन पर बिला वजह का खर्चा आ जाएगा तो खावन का नुकसान है और नीज औरतों का भी नुकसान है, उनमें से किसी एक को भी खावन नहीं मिला और अब आगे भी वो निकाह नहीं कर सकती। आपने कहा ना इसको इसी तरह चलने दो, जब इसी तरह चलने दिया भाई अब एक का तो निकाह है एक का निकाह नहीं, लेकिन पता नहीं कौन सी वाली का निकाह हुआ है और कौन सी वाली का निकाह नहीं हुआ, तो ये औरतें तो मुअल्लक हो गई, मुअल्लक यानी लटकी हुई हैं, ना तो इनको खावंद मिला है और ना ही आगे अब ये किसी और से निकाह कर सकती हैं, तो इनका नुकसान हुआ। बात समझ में आ गई, फिर सुनो यहां तायीन की भी कोई सूरत नहीं और इस निकाह को इसी तरह नाफिस कर दिया जाए ला अल तायीन यानी तजहील के साथ मजहूल करार देते हुए, तो इसकी भी कोई सूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई फायदा नहीं, दोनों में से मर्द और औरत में से किसी का फायदा नहीं और नीज या इसलिए क्योंकि इसमें दोनों का नुकसान है। कोई फायदा होता तो हम कहते ये चीज तकाजा कर रही है इस निकाह को ऐसे ही चलने दो, फायदा भी किसी का नहीं तो यहां कोई मुक्तजी भी नहीं और यहां एक ऐसी चीज मौजूद है जो मान्या बन रही है कि इसी तरह निकाह को चलने दिया जाए, वो चीज मान्या बन रही और वो क्या है नुकसान है। बात समझ में आ गई, तो ये माना है कि फिर देखिए कहते हैं वला वजह इल तायीन लिअदमिल औलवियति, और कोई सूरत नहीं है तायीन की क्योंकि तरजीह मादूम है, वला इल तनफीज मा तजहील, और कोई सूरत नहीं है कि इस निकाह को नाफिस कर दिया जाए मा तजहील मजहूल करार देने के साथ लिअदमिल फाइदती फायदा न होने की वजह से, फायदा न होने की वजह से इसी तरह इसको नाफिस करार दे दिया जाए मा तजहील के, औले जररी या जरर होने की वजह से नुकसान होने की वजह से तनफीज मा तजहील का कोई रास्ता नहीं है। तो या तो फायदे और जरर को दोनों से जोड़ दें, ना वो दो बहनों का कोई फायदा है ना खावंद का कोई फायदा है कि कोई एक भी उसके लिए हलाल नहीं है भाई, या इसलिए क्योंकि इसमें दोनों का नुकसान है, खावंद का भी नुकसान उस पर नफके का खर्चा बिला वजह आ जाएगा, बीवी नहीं मिली और नफके का खर्चा उस पर हो गया, और इसी तरह औरतों का भी नुकसान है कि वो मुअल्लक रहेंगी, ना तो खावंद मिला है और ना आगे निकाह की कोई सूरत है। बात समझ में आ गई, या यूं करें फायदे को सिर्फ खावंद से जोड़ दें और जरर को सिर्फ बीवियों से जोड़ दें, कि इस निकाह को इसी तरह नाफिज कर दिया जाए, ला अल तायीन, ये ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि खावन का कोई फायदा नहीं, उसने तो निकाह फायदे के लिए किया था, उसका कोई फायदा ही नहीं। और या इसलिए इसी तरह ला अल तायीन, इस निकाह को नाफिज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इन औरतों का नुकसान है, वो मुअल्लक रहेंगी, ना इनको खावंद मिला और ना आगे निकाह की इजाजत है भाई, तो लिहाजा मालूम हो इसी तरह नाफिस भी करार नहीं दे सकते। फतायन तफरीको, तो फिर जुदाई मुतायन हो गई, मालूम हो अब क्या करना पड़ेगी, इनमें जुदाई ही करना पड़ेगी, तायीन की भी कोई सूरत नहीं, इसी तरह इसको नाफिस करने की भी कोई सूरत नहीं है, तो आखिरी सूरत यही है कि इनमें जुदाई करवा दी जाए भाई, इनमें जुदाई करवा दी जाए। वलहुमा निस्फुल महरी, और इन दोनों के लिए निस्फ महर होगा, दोनों के लिए निस्फ महर होगा। याद रखो साहिबे हिदाया आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि अगर सोहबत से पहले बीवी को कोई शख्स तलाक दे दे, यूं कहे रुखसती से पहले अगर कोई शख्स बीवी को तलाक दे दे, निकाह हो गया था लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, रुखसती से पहले ही खामन ने बीवी को तलाक दे दी, तो इस सूरत में उसको निस्फ महर देना पड़ता है, और अगर रुखसती के बाद तलाक देगा फिर पूरा महर देना पड़ेगा। तो यहां पर जुदाई करवा दी जाएगी, तो लिहाजा अब रुखसती से पहले जुदाई आ गई तो अब निस्फ महर देना पड़ेगा, और दो निस्फ महर नहीं देगा, इसलिए क्योंकि एक निकाह मुनाकिद हुआ है, दूसरा तो हुआ ही नहीं, तो लिहाजा एक के लिए निस्फ महर आ जाएगा। लेकिन फिर आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि वो निस्फ महर पहली का हक बनता है, लेकिन पहली का पता ही नहीं चल रहा कि पहली वाली कौन सी है, तो उसी निस्फ महर को दोनों बहनें आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेंगी। मसलन एक बहन का महर भी 1 लाख, दूसरी बहन का महर भी 1 लाख, तो भाई दूसरी के साथ तो निकाह हुआ ही नहीं, वो 1 लाख तो हटा दें, सिर्फ महर कितना है 1 लाख है पहली के लिए जो महर है, और फिर ये रुखसती से पहले जुदाई आ गई तो अब निस्फ महर देना पड़ेगा, और वो 50,000 है, और फिर वो 50,000 पहली बीवी का हक है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा पहली वाली कौन सी है, तो उसको वो आपस में दोनों तकसीम कर लेंगी, 25,000 एक बहन ले लेगी और 25,000 दूसरी बहन ले लेगी। सूरत समझ में आ गई, देखिए भाई कहते हैं वलहुमा निस्फुल महरी, और इन दोनों के लिए निस्फ महर होगा, यानी एक ही निस्फ महर, लिअन्नहु वजब लिल उला मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि जो निस्फ महर है उन दोनों में से जो पहली है उसके लिए वाजिब हुआ है। वन अदमतिल औलवियतु लिल जहल बिल औवलियति, औलवियत का माना है औला होना, ज्यादा लायक होना, और औवलियत का माना है अव्वल होना, पहला होना। कहते हैं वन अदमतिल औलवियतु, और तरजीह भी मादूम है, तरजीह भी नहीं दी जा सकती, लिल जहली बिल अव्वलियति, क्योंकि अव्वल होना मजहूल है, अव्वल होना भाई दोनों बहनों में से एक के साथ निकाह हुआ है, दूसरी से तो निकाह ही नहीं हुआ, और जो पहली है वो ही लायक है कि उसको निस्फ महर दिया जाए, लेकिन पहली का पता नहीं चल रहा, लिहाजा जब पहली का पता नहीं चल रहा तो अब वो जो निस्फ महर है वो दोनों में तकसीम किया जाएगा। तो ये माना है वन आदमतिल औलवियतु, और तरजीह जो है वो मादूम है, लिल जहली बिल औवलियति, क्योंकि अव्वल होना मजहूल है, अव्वल होना पहली होना मजहूल है, तो तरजीह नहीं हो सकती, पहली का पता चल जाता तो निस्फ महर हम उसी को देते, लेकिन पहली होना मजहूल है, पहली का पता नहीं चल सकता, जब पहली होना मजहूल हुआ तो तरजीह भी नहीं हो सकती, जब पहली होने का पता नहीं चल सकता तो तरजीह भी नहीं हो सकती भाई। ये माना है वन आदमतिल औलवियतु लिल जहली बिल औवलियति, और तरजीह मादूम होगी अव्वल होना मजहूल होने की वजह से, फयुन सरफु इलैहिमा, तो ये जो महर है दोनों की तरफ पलट जाएगा, दोनों की तरफ फिर जाएगा, यानी दोनों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा, एक को नहीं देंगे दोनों को देंगे। वकील, और कहा गया है लाबुद्द मिन दावा कुल्ली वाहिदति मिन्हुमा अन्नहल उला अविल इस्तिलाही लिजहालतिल मुस्तहिकती, वकील, और कहा गया है, यहां से फकीह अबू जाफर हिंदवानी रहमहुल्ला का कौल जिक्र फरमा रहे हैं, मैंने बतलाया था कि फकीह अबू जाफर हिंदवानी रहमहुल्ला ये अबू हनीफा सगीर के नाम से मशहूर थे, कि ये तो छोटे अबू हनीफा हैं भाई, ये इतने माहिर थे फिका के भाई। और इनकी वफात मैंने बतलाया था 362 हिजरी में हुई थी भाई। तो ये फकीह अबू जाफर हिंदवानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इधर देखिए वो फरमाते हैं कि वो जो निस्फ महर है दोनों में वैसे ही नहीं तकसीम कर देंगे कि निस्फ महर लिया खावन से और आधा एक को दे दिए और आधा दूसरे को, नहीं भाई। वजह यह कि इन दोनों में से एक का हक है और एक के हक को आप वैसे ही दोनों में तकसीम कर दें बगैर किसी वजह के, नहीं बल्कि जरूरी है कि ये दोनों काजी के पास दावा करें। एक बहन कहे मैं पहली थी, दूसरी बहन कहे मैं पहली थी, अगर सिर्फ एक दावा करती है तो फिर उसी का हक है, उसी को दिया जाएगा, दूसरी ने तो दावा ही नहीं किया। तो लिहाजा दोनों क्या करें, दावा करें, हर एक कहे काजी साहब मैं पहली बीवी हूं उसकी, मुझसे पहले निकाह किया था। जब दोनों दावा करेंगी और काजी के पास तरजीह की कोई सूरत नहीं क्योंकि पता ही नहीं है, तो फिर दोनों में वो माल क्या कर देगा, बराबर बराबर तकसीम कर देगा, या खुद ही दोनों आपस में सुलह कर लें कि लाइए भाई हम आपस में सुलह करती हैं, आधा आधा महर हम लेंगी, तो ये निश्चय महर हमारे दरमियान तकसीम कर दो। बात समझ में आ गई। तो निस्फ महर दोनों में वैसे ही नहीं तकसीम किया जाएगा बल्कि दोनों की तरफ से दावा जरूरी है या दोनों की आपस में सुलह जरूरी है। ये कौन फरमा रहे हैं, फकीह अबू जाफर हिंदवानी रहमहुल्ला। तो कहते हैं वकीला और कहा गया है लाबुद्द मिन दावा कुल वाहिदति मिन्हुमा कि जरूरी है उन दोनों में से हर एक की तरफ से यह दावा कि अन्नहल उला के वो पहली है, यह दावा जरूरी है। अविल इस्तेलाही, इस्तेलाह का माना है सुलह होना, इत्तेफाक होना। अविल इस्तेलाही या जरूरी है सुलह का होना और इत्तेफाक का होना दोनों बहनों की तरफ से जरूरी है, वैसे ही नहीं तकसीम किया जाएगा। लि जहालतिल मुस्तहिकती, मुस्तहिका के मजहूल होने की वजह कि कौन मुस्तहिक है, किसका हक बनता है भाई, पहली का हक बनता है लेकिन पहली तो मजहूल है, उसका पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी वाली पहली है, तो फिर दोनों में तकसीम कर दिया जाए। बात समझ में आ गई भाई। याद रखिए ये जो आया ना ये वकीला ला बुद्ध मिन दावा कुल्ली वाहिदती मिन हुमा, याद रखो ये जो कीला है इसको सीगा तमरीज कहते हैं। मर्रज़ा युमर्रिज़ु तमरीज का एक माना होता है कमजोर कौल को जिक्र करना, कमजोर कलाम को जिक्र करना। तो ये जो कीला है इसके जरिए कमजोर कौल को जिक्र किया जाता है, लेकिन यहां ये जो कीला साहिब हिदाया लाए ये इसलिए नहीं लाए कि ये कौल कमजोर है, कोई यहां दो कौल हैं, एक कौल मजबूत है और एक कौल कमजोर है, तो कमजोर कौल को किससे जिक्र किया जाता है, कीला के साथ। यहां ऐसा नहीं है, यहां और कोई दूसरा कौल नहीं और कोई दूसरी रिवायत नहीं। बाकी फुकहा ने तो सिर्फ इतना मसला जिक्र फरमाया कि वो निस्व महर दोनों बहनों में तकसीम कर दिया जाएगा, लेकिन फकीह अबू जाफर ने यहां मजीद तफसील बयान की कि वैसे ही नहीं तकसीम करेंगे, या दोनों आपस में सुलह कर लें खुद ही तकसीम करें, या दोनों काजी के पास दावा करें कि वो पहली हैं फिर तकसीम किया जाएगा। तो ये तफसील फकीह अबू जाफर ने जिक्र की थी, तो साहिब हिदाया उसको भी बतलाना चाहते थे, तो कीला के साथ इस तफसील को बयान कर दिया। तो इसका ये माना नहीं कि ये कौल कमजोर है, उसको जिक्र करना चाहते थे तो कीला के साथ जिक्र कर दिया भाई। तो फकीह अबू जाफर हिंदवानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि काजी के पास या दावा कर लें या काजी के पास नहीं जाना चाहती तो यहीं पर आपस में क्या कर लें, सुलह कर लें और उसको आधा आधा तकसीम कर लें। आगे देखिए भाई, वला यजमाउ बैनल मरअति व अम्मतिहा औ खालतिहा अविबनति अखीहा अविबनति उख्तिहा, वला यजमाउ बैनल मरअति व अम्मतिहा। सूरत मसला यह कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है, अब ये इस औरत की फूफी के साथ भी निकाह करना चाहता है, यानी औरत और उसकी फूफी दोनों को अपने निकाह में जमा करना चाहता है, तो साहिबे हिदाया आपको बतला रहे हैं कि यह जायज नहीं। एक औरत और उसकी फूफी जो है दोनों एक ही शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। इसी तरह एक औरत से निकाह किया है और अब वो शख्स जो है उस औरत की खाला के साथ निकाह करना चाहता है, कहते हैं ये भी जायज नहीं है। किसी औरत को और उसकी खाला को एक ही मर्द के निकाह में जमा करना जायज नहीं। या इसका बरअक्स कर लें, पहले पहले औरत से निकाह किया, अब उसकी फूफी से निकाह करना चाहता है। अब इसका बरअक्स करें, यानी पहले फूफी से निकाह किया है और अब उसके भतीजी से निकाह करना चाहता है, यह भी जायज नहीं। पहली क्या सूरत थी, एक औरत से निकाह किया है और किससे अब निकाह करना चाहता है, उसी औरत की फूफी से। खावंद की फूफी की बात नहीं हो रही, बात समझ में आ गई। वो तो मसला पीछे गुजर चुका था कि किसी भी शख्स पर उसकी फूफी भी हराम और उसकी खाला भी हराम है, यहां बीवी की फूफी की बात हो रही है। एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है और अब इसी औरत की फूफी से भी निकाह करना चाहता है, दोनों को निकाह में जमा करना चाहता है, यह जायज नहीं। तो पहले निकाह किससे, औरत से, यानी यूं को भतीजी से, किससे निकाह, भतीजी से पहले निकाह, और अब उसकी फूफी से भी निकाह करना चाहता है। या अब इसका बरअक्स कर लो, पहले निकाह किया है फूफी से और अब निकाह किससे करना चाहता है, भतीजी से, तो यह जायज नहीं। अब खाला में यही सूरत बना लो, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है, यानी भांजी से, किससे, भांजी से, और अब उसकी खाला के साथ निकाह करना चाहता है, यानी भांजी और खाला दोनों को निकाह में जमा करना चाहता है, यह जायज नहीं है भाई। पहले किससे किया, भांजी से, फिर किससे करना चाहता है, खाला से। अब इसका बरअक्स कर लो, पहले खाला से निकाह किया है और अब उसकी भांजी से निकाह करना चाहता है, नहीं भाई, इन दोनों को एक शख्स बैक वक्त निकाह में जमा नहीं कर सकता। जी तो कहते हैं वला यजमाउ बैनल मरअति व अम्मतिहा, और कोई शख्स जमा नहीं कर सकता किसी औरत को और उसकी फूफी को, औ खालतिहा या उसकी खाला को, अभी बनती अखीहा या उस औरत की भतीजी को, ए बना तो अखीहा भाई की बेटी, वो क्या होती है, भतीजी। किसी औरत से निकाह किया है यानी फूफी से पहले निकाह किया है, अब उसकी भतीजी से भी निकाह करना चाहता है, ये जायज नहीं। तो कहते हैं अभी बनाती अखीहा या उसकी भतीजी को जमा नहीं कर सकता, किसी औरत को और उसकी भतीजी को जमा नहीं कर सकता, अभी बनाती उख्तिहा या उसकी भांजी को। तो यहां देखो, यहां दो चीजें जिक्र हो रही हैं कि औरत और उसकी फूफी को जमा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दो सूरतें बना दी कि पहले औरत से निकाह किया है यानी भतीजी से, अब फूफी से निकाह नहीं कर सकते, या इसका बरअक्स कर लो, पहले फूफी से निकाह किया है अब भतीजी से निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह खाला वाली सूरत के अंदर भी दो सूरतें बन गई, पहले किससे निकाह किया है, भांजी से, अब किससे करना चाहता है, उसकी खाला से, यह नहीं कर सकता। या इसके बरअक्स कर लो, पहले किससे किया है, खाला से किया है, और आप भांजी से निकाह करना चाहता है, तो यह जायज नहीं। तो यह गोया दो ही मसलों को दो अलग अलग सूरतों में जिक्र फरमा दिया। मसले दो ही हैं लेकिन सूरतें कितनी बना ली, दो, कि पहले भांजी से किया फिर खाला से किया, या पहले खाला से किया फिर भांजी से किया, दो सूरतें बन गई, या पहले भतीजी से किया और फिर फूफी से, और या फिर पहले फूफी से और फिर भतीजी से। तो मसले दो ही हैं, सूरतें हर एक में दो दो बना लें। तो कहते हैं वला यजमाउ बैनल मरअति व अम्मतिहा, और कोई शख्स जमा नहीं कर सकता किसी औरत को और उसकी फूफी को, औ खालतिहा या उसकी खाला को, अभी बनाती अखीहा या उसकी भतीजी को, अभी बनाती उख्तिहा या उसकी भांजी को। सवाल, जब दो मसले हैं तो हर एक की दो दो सूरतें बनाने की क्या जरूरत पेश आई, मतन तो मुख्तसर होता है, मतन में तो मुख्तसर बात की जाती है। तो जवाब यह कि चूंकि हदीस में इस तरह आया था, तो हदीस में ये दोनों मसले दो दो सूरतों के साथ जिक्र थे, तो मतन में भी इन दो मसलों को दो दो सूरतों में जिक्र फरमाया। तो देखिए आगे हदीस आ रही है, लिकौलिही अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से, लातुन का हुल मरअतु अला अम्मतिहा, न निकाह किया जाए किसी औरत से उसकी फूफी पर, वला अला खालतिहा और न उसकी खाला पर, वला अला बनती अखीहा और न उसकी भतीजी पर, वला अला बनती उख्तिहा और न उसकी भांजी पर। तो हदीस में ये दो मसले दो दो सूरतों में जिक्र हुए थे, इसलिए मतन में भी इन दो मसलों को दो दो सूरतों में जिक्र फरमाया। और हदीस में ये दो दो मर्तबा क्यों जिक्र हैं, याद रखो आप पढ़ चुके हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को जामिअ कलिमात अल्लाह ने नसीब फरमाए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की बात मुख्तसर होती है लेकिन मानी बहुत ज्यादा उसमें होते हैं। तो यहां पर जो हदीस के अंदर दो दो सूरतें जिक्र की गई, वो इसलिए क्योंकि शुबा हो सकता था किसी आदमी को, तो उस शुबे को खत्म करने के लिए। शुबा यह हो सकता था कि भाई एक है फूफी और एक है भतीजी, फूफी का रुतबा आला, वो उसूल की तरफ है, वो बाप की बहन है, उसका मकाम ऊंचा है, और भतीजी तो उसकी औलाद की तरह है भाई। तो अगर एक शख्स जो है उसके निकाह में फूफी है, कौन है यानी आला औरत उसके निकाह में मौजूद है, और अब वो इस औरत की भतीजी से निकाह करना चाहता है, तो आला के होते हुए अदना के साथ निकाह जायज नहीं। जैसे भाई बांदी के साथ जो निकाह है, याद रखो कोई शख्स आजाद औरत से निकाह करना चाहे या बांदी से निकाह करना चाहे, दोनों उसके लिए जायज हैं। बांदी का महर अमूमन कम होता है आजाद औरत के मुकाबले में, लिहाजा बांदी से भी निकाह कर सकता है। लेकिन याद रखना बांदी से जो औलाद होगी वो उस बांदी के मालिक की ममलूका होगी। मसलन एक आजाद आदमी है, उसने किसी शख्स की बांदी से निकाह कर लिया, तो याद रखो जो भी औलाद पैदा होगी इस बांदी से वो बांदी के मालिक की ममलूका होगी, वो सब गुलाम और बांदियां होंगे। बाप बेशक आजाद है लेकिन मां तो बांदी है, और याद रखो औलाद गुलामी और आजादी में मां के ताबिया होती है। मां आजाद हो तो औलाद भी आजाद, मां जो है ममलूका है तो औलाद भी ममलूका होगी। बात समझ में आ गई? तो अब एक शख्स है वो उसकी मर्जी है, वो चाहे आजाद औरत से निकाह करे चाहे बांदी से निकाह करे, लेकिन अगर उसने आजाद औरत से निकाह कर लिया है, एक आजाद औरत उसके निकाह में मौजूद है, तो अब बांदी के साथ निकाह जायज नहीं, क्योंकि आला औरत उसके निकाह में मौजूद है, तो आला के होते हुए उसके ऊपर अदना को लाने की इजाजत नहीं। हां इसका बरअक्स करे तो जायज है, एक शख्स के निकाह में बांदी मौजूद है, अदना औरत मौजूद है, अब वो आजाद औरत से निकाह करना चाहता है, तो अदना के होते हुए आला से निकाह कर सकता है। हासिल कलाम क्या हुआ कि आला के होते हुए अदना से निकाह जायज नहीं, लेकिन अदना के होते हुए आला से निकाह जायज है। तो किसी के जहन में यह शुबा आ सकता था कि भाई फूफी है आला और भतीजी है अदना, लिहाजा एक शख्स के निकाह में एक औरत है यानी फूफी है और वो उसकी भतीजी से निकाह करना चाहता है, तो आला के ऊपर अदना लाने की इजाजत नहीं, लिहाजा ये निकाह तो जायज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका बरअक्स हो, एक शख्स के निकाह में भतीजी है यानी अदना है और इसके बाद वो आला को लाना चाहता है, तो ये जायज होगा, ये जायज होगा। तो किसी के जहन में यह शुबा आ सकता था। या इसी तरह एक शख्स के निकाह में खाला है तो खाला के ऊपर भांजी नहीं ला सकता, लेकिन अगर निकाह में भांजी है तो उसके ऊपर आला यानी खाला के साथ निकाह कर सकता है। तो किसी के जहन में यह शुबा आ सकता था। तो हदीस के अंदर दोनों सूरतें बयान कर दी गई कि नहीं भाई यहां किसी तरफ से भी निकाह की गुंजाइश नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, कहते हैं वहादा मशहूर यजूजु ज़ियादतु अलल किताबी भी मिसरी ही, और ये हदीसे मशहूर है, इस जैसी हदीस के जरिए किताबुल्ला पर ज्यादती जायज है। भाई देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने उन औरतों को जिक्र फरमाया जो इंसान पर हराम है। मसलन कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, अपने आबा की बीवियां तुम्हारे लिए हलाल नहीं। इसी तरह कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये आयत के अंदर वो गुज़श्ता सबक में जो जिक्र आया था, ये तमाम औरतें ये औरतें इंसान पर हराम हैं। ये जो हराम औरतें हैं उनको जिक्र करने के बाद आगे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वह उहिल्ला लकुम मा वरा अदालिकुम, वह उहिल्ल लकुम मा वरा अदालिकुम, यानी ये जो औरतें हमने जिक्र कर दी ये तो तुम पर हराम हैं, इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। वह उहिल्ल लकुम, और तुम्हारे लिए हलाल हैं, मा वरा अदालिकुम, इन औरतों के अलावा, ये जो हमने जिक्र कर दी इनके अलावा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। वहां तो क्या जिक्र हुआ था, दो बहनों को जमा करना हराम है, दो बहनों को जमा करना हराम है। मालूम हुआ फूफी और भतीजी को जमा करना हराम नहीं, वहां वो तो आयत में कहीं जिक्र नहीं जी। भांजी और खाला को जमा करना हराम नहीं क्योंकि आयत में जिक्र नहीं, और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ये जो हमने जिक्र कर दी इनके अलावा बाकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, मालूम हुआ भांजी और खाला को जमा किया जा सकता है, मालूम हुआ फूफी और भतीजी को जमा किया जा सकता है। ये किससे पता चल रहा है? किताबुल्लाह से। तवज्जो है, किताबुल्लाह से पता चल रहा है। तो फिर आप कैसे ये हदीस के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती कर सकते हैं कि आप कहें कि ये औरतें भी हराम हैं ये जो हदीस में आ गई? तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि भाई ये जो हदीस है ये खबर मशहूर है, ये हदीस क्या है? खबर मशहूर है। और आप उसूल फिका के अंदर आप जाब्ता पढ़ चुके हैं कि खबर मशहूर के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज है, खबर मशहूर के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज है। याद रखो ये हदीस मशहूर से मुराद फुकाहा वाली हदीस मशहूर है। एक हदीस मशहूर वो है जो मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं और एक हदीस मशहूर वो है जो उलमाए उसूल फिका बयान फरमाते हैं। याद रखो मुहद्दिसीन की तकसीम अलग है और उलमाए उसूल फिका की तकसीम अलग है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हदीस दो किस्म पर है, या वो खबर मुतवातिर होगी या खबर वाहिद होगी। हदीस कितनी किस्म पर? दो। ये कौन फरमा रहे? मुहद्दिसीन। या खबर मुतवातिर होगी या खबर वाहिद होगी। खबर वाहिद भी कहते हैं, खबर आहाद भी कहते हैं, दोनों इसी के नाम हैं। खबर मुतवातिर किसे कहते हैं कि जिसके रिवायत करने वाले हर जमाने में इतने इंसान हो कि अकल उनके इज्तिमा अलल कजिब को महाल समझे, कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सब जब रिवायत कर रहे हैं मालूम हुआ बात ऐसी ही है, इसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं, इसको कहते हैं खबर मुतवातिर। तो ये है खबर मुतवातिर। और जो ऐसी ना हो उसको कहते हैं खबर वाहिद मुहद्दिसीन के नजदीक। फिर खबर वाहिद की तीन किस्में हैं, खबर मशहूर, खबर अजीज और खबर गरीब। खबर मशहूर उसको कहते हैं कि जिसके रिवायत करने वाले किसी भी जमाने में तीन से कम ना हो, वो खबर मशहूर है। और जिस हदीस के रिवायत करने वाले किसी भी जमाने में या तमाम जमानों में दो हों तो उसको खबर अजीज कहते हैं। और अगर किसी हदीस के रिवायत करने वाले तमाम जमानों में या किसी एक जमाने में सिर्फ एक हो तो उसको हदीस गरीब कहते हैं। तो मुहद्दिसीन के नजदीक क्या तकसीम हुई? हदीस कितनी किस्म पर? दो। या खबर मुतवातिर होगी या खबर वाहिद। और फिर खबर वाहिद की किस्म है खबर मशहूर, खबर अजीज और खबर गरीब। तवज्जो है। तो मुहद्दिसीन के नजदीक खबर मशहूर खबर वाहिद की किस्म है, जबकि उलमाए उसूल फिका हदीस की तकसीम सुलासी करते हैं कि हदीस तीन किस्म पर है, या वो खबर मुतवातिर होगी या खबर मशहूर होगी या खबर वाहिद होगी, यानी या खबर आहाद कह लो। तो तीन किस्म। तो उलमाए उसूल फिका के नजदीक खबर मशहूर और खबर वाहिद ये एक दूसरे की कसीम है, एक दूसरे के मुकाबले में है, जबकि उलमा हदीस के नजदीक खबर मशहूर खबर वाहिद की किस्म है, उसके अंदर ही दाखिल है। जबकि उलमा उसूल फिका के नजदीक खबर मशहूर खबर वाहिद की किस्म नहीं बल्कि एक दूसरे के मुकाबले में है, एक दूसरे की कसीम है। क्या है? कसीम है। किसी शय की जो किस्म है वो उसके तहत होती है। जैसे कलीमा की तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। तो ये सारी कलीमा की किस्में हैं, ये कलीमा के तहत हैं। इसम भी, फेल भी और हर्फ भी, हर एक कलीमा है। इसम भी कलीमा, फेल भी कलीमा, हर्फ भी कलीमा, क्योंकि ये कलीमा के तहत हैं, कलीमा की किस्में हैं भाई। लेकिन ये जो किस्में हैं आपस में एक दूसरे के लिहाज से कसीम कहलाती हैं। जैसे इसम के मुकाबले में क्या है? फेल और हर्फ। तो ये फेल और हर्फ इसम की कसीम है। एक कलीमा एक वक्त में या इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, ये तीनों इकट्ठी नहीं हो सकती क्योंकि एक दूसरे के मुकाबिल हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन के नजदीक हदीस की कितनी किस्में? दो। या खबर मुतवातिर होगी या खबर वाहिद। और फिर खबर वाहिद की तीन किस्में हैं, या खबर मशहूर होगी या खबर अजीज होगी या खबर गरीब। तो मशहूर, अजीज और गरीब ये खबर वाहिद की किस्में हैं, खबर वाहिद के तहत दाखिल हैं। बात समझ में आ गई। जबकि आइंदा उलमाए उसूल फिका हदीस की तीन किस्में हैं, खबर मुतवातिर, खबर मशहूर और खबर वाहिद। तो देखो यहां पर खबर मशहूर और खबर वाहिद एक दूसरे के मुकाबले में है। खबर मशहूर कोई खबर वाहिद की किस्म नहीं है उस उलमाए उसूल फिका के नजदीक, बल्कि एक दूसरे के मुकाबले में है। तो उलमाए उसूल फिका के नजदीक खबर मुतवातिर की तो वही तारीफ है जिसके रिवायत करने वाले हर जमाने में इतने ज्यादा हो कि अकल उनके इज्तिमा अल कजिब को महाल समझे। और खबर मशहूर आइंदा उलमाए उसूल फिका किसे कहते हैं कि जिसके पहले जमाने में तो रिवायत करने वाले ज्यादा नहीं लेकिन बाद में उसकी रिवायत करने वाले बहुत ज्यादा हैं। पहले जमाने में यानी सहाबा के जमाने में सहाबा सारे आदिल हैं। जब सहाबी एक हदीस को रिवायत कर रहा है मालूम हुआ बात ऐसी ही है
जी।
तो सहाबा के जमाने में एक हदीस मुतवातिर के दर्जे को नहीं पहुंची लेकिन बाद में ताबईन और तबे ताबईन के जमाने के अंदर वो हदीस तवातुर के दर्जे को पहुंच गई। तो इसको मुतवातिर तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुतवातिर के लिए तो हर जमाने में बड़ी जमात का होना जरूरी है लेकिन इसको खबर मशहूर कहेंगे कि पहले जमाने में तो ये शोहरत तक नहीं पहुंची थी लेकिन बाद में इसके रिवायत करने वाले बहुत ज्यादा हैं, ये मशहूर हो गई, शोहरत तक पहुंच गई भाई। और अगर सहाबा के जमाने के बाद किसी जमाने के अंदर वो हदीस को रिवायत करने वाले सिर्फ एक या दो हैं तो फिर ये खबर वाहिद है। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम यह हुआ कि मुहद्दिसीन के नजदीक खबर मशहूर खबर वाहिद ही है क्योंकि वो उसकी किस्म है ना। जैसे जैसे कलिमा की कितनी किस्में हैं, इसम फेल और हर, तो हर किस्म को आप कह सकते हैं ये कलिमा है। इसम कलिमा है, फेल कलिमा है, हर कलिमा है, तो हर एक पर कलिमा का लफ्ज बोल सकते हैं क्योंकि ये कलिमा की किस्में हैं। और इसी तरह ये मुहद्दिसीन के नजदीक खबर मशहूर, खबर अजीज, खबर गरीब, ये खबर वाहिद की किस्में हैं। तो इनमें से हर एक को खबर वाहिद कह सकते हैं क्योंकि ये उसी की किस्में हैं। खबर मशहूर भी क्या है, खबर वाहिद। खबर अजीज भी क्या है, खबर वाहिद। और खबर गरीब भी क्या है, खबर वाहिद, क्योंकि उस खबर वाहिद ही की किस्में हैं। जबकि फुकाहा मैंने बतलाया वो सुलासी तकसीम करते हैं। फुकाहा के नजदीक एक खबर मुतवातिर है, एक खबर मशहूर है और एक खबर वाहिद है भाई। तो खबर मशहूर और खबर वाहिद एक दूसरे के मुकाबले में हैं। जो खबर मशहूर है वो खबर वाहिद नहीं और जो खबर वाहिद है वो खबर मशहूर नहीं है भाई। फर्क समझ में आया। तो खबर मशहूर जब उम्मत ने उसको कबूल कर लिया सहाबा के बाद वो शोहरत की हद तक पहुंच गई तो मालूम हुआ बात ऐसी ही है
जी।
बात तो इसको खबर मशहूर कहेंगे। हां अलबत्ता मुतवातिर से इसका दर्जा कम ही है बहरहाल भाई। खबर मुतवातिर उसके तो हर जमाने में नकल करने वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं जबकि खबर मशहूर में खबर मशहूर जो है वो सहाबा के जमाने के बाद फिर शोहरत की हद तक पहुंच गई। तो ये इसका मकाम भी बड़ा आला है लेकिन बहरहाल खबर मुतवातिर वाला मकाम नहीं है। बात समझ में आ गई। तो साहिब हिदायत फरमाते हैं वहादा मशहूरुन कि ये हदीस खबर मशहूर है। यजूजु ज़ियादतु अलल किताबि बिमिस्लिही, इस जैसी हदीस के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज है। तो किताबुल्लाह से मालूम हुआ था उन औरतों का हराम होना जो गुज़श्ता सबकों में आप पढ़ चुके हैं, फूफी और भतीजी का जमा करना और खाला और भांजी का जमा करना, यह किताबुल्लाह से मालूम नहीं हुआ, इसका पता हदीस से चल गया। और यह खबर मशहूर है, हदीस मशहूर है, इसके जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज है। आगे देखिए भाई, वला यजमाउ बैन इमरअतैन लौ कानत इहदाहुमा रजुलन लम यजुज लहू अन यतज़व्वज बिल उखरा। भाई इधर देखिए, अब साहिब कुदूरी बाकायदा ज़ाब्ता जिक्र फरमा रहे हैं कि किन औरतों को जमा करना जायज है और किन औरतों को जमा करना जायज नहीं एक ही शख्स के निकाह में। तो ज़ाब्ता यह है कि वो दो औरतें कि जिनमें से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो उनका निकाह आपस में जायज न हो, तो इन दो औरतों को एक ही शख्स के अकद में जमा करना जायज नहीं। तवज्जो है, क्या जाब्ता हुआ? ऐसी दो औरतें कि उन दोनों में से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो उनका निकाह आपस में जायज न हो, तो इस जैसी दो औरतों को एक शख्स के निकाह में जमा करना जायज नहीं। मसलन देखो, दो बहनें हैं, दो बहनें हैं, दो बहनों में से एक को मर्द फर्ज करो, मुजक्कर फर्ज करो, अब इनका आपस में क्या रिश्ता, भाई बहन वाला, दो बहनें हैं ना, पहले एक को मर्द फर्ज करो, ये तो ये आपस में रिश्ता कौन सा हुआ, भाई बहन वाला। और तो देखो ये भाई बहन तो एक दूसरे पर हराम है, एक जानिब से हुरमत आ रही है। अच्छा अब यूं करो, दूसरी बहन को जरा मुजक्कर फर्ज करो, दूसरी को मुजक्कर फर्ज किया, पहली उसी तरह मुअन्नस है, तो अब दोनों में कौन सा रिश्ता, अब भी भाई बहन वाला रिश्ता। तो देखो इस तरफ से भी हुरमत आ रही है, भाई बहन का आपस में निकाह जायज नहीं। तो एक को मर्द फर्ज किया तो भी हुरमत थी, हराम था निकाह, दूसरी को मर्द फर्ज किया तो भी निकाह हराम है। तो इस तरह की जो भी दो औरतें होंगी उनको एक शख्स के अकद में जमा करना जायज नहीं है। भाई बात समझ में आ गई, जैसे अभी मसला गुजरा, फूफी और भतीजी को जमा नहीं कर सकते, फूफी और भतीजी। अच्छा फूफी और भतीजी इनको आप देख लो, फूफी को जरा मर्द तसव्वुर करो, फूफी किसको कहते हैं, बाप की बहन को, तो इसको जरा बाप का भाई तसव्वुर कर लो, तो ये चचा हो गया, क्या बन गया, चचा। और दूसरी तरफ कौन है, भतीजी, तो चचा और भतीजी, तो चचा पर तो भतीजी हराम होती है, वो तो उसके भाई की औलाद है, अपनी औलाद की तरह है। तो देखो फूफी और भतीजी में से फूफी को मर्द तसव्वुर किया तो निकाह हराम है भतीजी के साथ। आप इसका बरअक्स कर लो, फूफी को उसी तरह औरत रहने दो और भतीजी को जरा मर्द तसव्वुर करो, तो आप एक मर्द है और ऊपर उसकी फूफी है, और अब आप जानते हैं किसी भी मर्द के लिए उसकी फूफी से निकाह जायज नहीं। तो देखा दोनों तरफ से निकाह हराम हो रहा है। तो जब दोनों तरफ से हुरमत आ रही हो तो इस जैसी दो औरतों को कोई एक शख्स अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला यजमाउ बैन इम्रअतैन लौ कानत इहदाहुमा रजुलन लम यजुज़ लहू अन यतज़व्वज बिल उख्रा। वला यजमाउ बैन इम्रअतैन, और किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो जमा करे, बैन इम्रअतैन, दो ऐसी औरतों को, लौ कानत इहदाहुमा रजुलन, कि अगर इन दोनों में से कोई एक मर्द होता, लम यजुज़ लहू अन यतज़व्वज बिल उख्रा, तो उसके लिए जायज न होता कि वो दूसरी के साथ निकाह करे। भाई लिअन्न अलजमअ बैनहुमा युफ़ज़ी इलल क़तीअति, मैंने वजह जिक्र की थी भाई, अल्लाह ने दो बहनों को जमा करने से मना फरमाया है। वजह क्या, वजह यह कि दो बहनों में बड़ी मोहब्बत होती है, और जब एक ही शख्स के निकाह में आएंगी तो यह आपस में सौकने बन जाएंगी, और सौकनों के अंदर तब नफरत और बुगस होता है। तो देखो यह जो निकाह है, यह एक शख्स के निकाह में होना, इसने कतए रहमी तक पहुंचा दिया। कहां तक पहुंचा दिया, कतए रहमी तक पहुंचा दिया, यानी कि रिश्तेदार से ताल्लुक टूट रहा है, मोहब्बत के बजाय नफरत आ रही है। और शरीयत वो तो सिला रहमी का हुक्म देती है, वो तो कतए ताल्लुक की इजाजत नहीं देती। लिहाजा जो भी रिश्ता कतए ताल्लुक तक ले जाने वाला है वो जायज नहीं है। भाई तो बात समझ में आ गई। तो यही बयान कर रहे हैं, लिअन अलजमअ बैनहुमा युफ़ज़ी इलल क़तीअति, क़तीअ कहते हैं कतए ताल्लुक को, क़तीअ का क्या माना, कतए ताल्लुक यानी रिश्तेदारों से अलहदगी इख्तियार करना, उनसे ताल्लुक को तोड़ लेना। तो कहते हैं लिअन अलजमअ बैनहुमा युफ़ज़ी इलल क़तीअति, इसलिए क्योंकि इनके दरमियान जमा करना वो पहुंचा देगा कतए ताल्लुक तक, रिश्तेदारों से कतए ताल्लुक तक ये पहुंचा देगा। वल क़राबतुल मुहर्रमतु लिन्निकाहि मुहर्रमतु लिल्क़त्अ, भाई हिदाया की फसीह बलीग इबारतें चल रही हैं, साहिब हिदाया फरमाते हैं वल क़राबतुल मुहर्रमतु लिन्निकाहि मुहर्रमतु लिल्क़त्अ। कराबत कहते हैं रिश्तेदारी, करीबी रिश्तेदारी, और वो करीबी रिश्तेदारी अल मुहर्रमतु लिन्निकाहि, जो निकाह को हराम करार देने वाली है, मुहर्रमतु लिल्क़त्अ, यही कराबतदारी हराम करार देने वाली है, लिल्क़त्अ कतए ताल्लुक को, कतए रहम को हराम करार देने वाली है। भाई इधर देखिए, कुछ करीबी रिश्ते हैं कि वहां निकाह हराम है, जैसे फूफी से निकाह हराम, खाला से निकाह हराम, दो बहनों को जमा करना हराम। तो कुछ करीबी रिश्ते हैं वो निकाह को हराम करार देते हैं, यही करीबी रिश्ते कतए ताल्लुक को भी हराम करार देते हैं। यही करीबी रिश्ते शरीयत क्या हुक्म देती है, फूफी से ताल्लुक रखो या तोड़ो, तो फूफी के साथ ताल्लुक रखो भाई, खाला के साथ ताल्लुक रखो या तोड़ो, खाला के साथ ताल्लुक रखने का हुक्म है अच्छे तरीके से। तो इसी तरह दो बहनों के दरमियान वगैरह ये जितनी सूरतें आई, तो देखो यहां पर निकाह हराम है। ये निकाह क्यों हराम? करीबी रिश्तेदार होने की वजह से। फूफी खाला बहन बेटी वगैरह से निकाह हराम होता है आदमी के लिए। क्यों हराम होता है? करीबी रिश्ते की वजह से। तो ये करीबी रिश्ता निकाह को हराम करार देता है। यही करीबी रिश्ता कतई ताल्लुक को भी हराम करार देता है। इन करीबी रिश्तों में कतई ताल्लुक नहीं किया जा सकता। भाई आप दो बहनों को निकाह में जमा करेंगे तो आपने तो क्या कर दिया? कतई ताल्लुक करवा दिया उन दो बहनों का, हालांकि इनमें तो करीबी रिश्ता है। तो जो करीबी रिश्ता इनसे निकाह को हराम करार दे रहा था, वही करीबी रिश्ता इस कतई ताल्लुक को भी हराम करार दे रहा है। नई बात समझ में आई? क्या बात हुई? कुछ औरतों से निकाह हराम। क्यों हराम? करीबी रिश्ता है। तो जैसे करीबी रिश्ता निकाह को हराम करार देता है, इसी तरह करीबी रिश्ता कतई ताल्लुक को भी हराम करार देता है। करीबी रिश्ता हो तो शरीयत कतई ताल्लुक की इजाजत नहीं देती, बल्कि सिला रहमी का हुक्म देती है। तो लिहाजा अगर आप इन दो औरतों को जमा करेंगे, ये तो कतई ताल्लुक तक बात चली जाएगी, और हालांकि कतई ताल्लुक तो यहां हराम है, लिहाजा इन औरतों को जमा करना भी हराम होगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं वल कराबतुल मुहर्रिमतुल निकाही, और ये रिश्तेदारी जो हराम करने वाली है निकाह को, मुहर्रिमतुल लिल कतई, ये कतई ताल्लुक को भी हराम करने वाली है। ये कतई ताल्लुक या कतई रहम कह लें, कतई रहम को भी ये हराम करने वाली है। अल्लाह ने तो सिला रहमी का हुक्म दिया है, कतई रहमी का हुक्म नहीं दिया, तो वो हराम है। लिहाजा ये निकाह भी हराम होगा जो कतई ताल्लुक तक ले जाए। वलौ कानतिल महरमियतु बैनहुमा बिसबबिर रज़ाई तहरुमु लिमा रवैना मिन क़ब्लु, वलौ कानतिल महरमियतु बैनहुमा बिसबबिर रज़ाई, और अगर महरम होना इन दोनों के दरमियान वो रिजायत के सबब से हो। किसके सबब से हो? भाई गुजश्ता सबक के अंदर हदीस आई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, रजायत की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम हैं। भाई देखो, दो हकीकी बहनों को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये महरम है। भाई ये दो बहनें हैं, इनमें से हर एक को मर्द फर्ज करो तो निकाह जायज होता है या हराम रहता है? हराम रहता है। मालूम हुआ ये दोनों एक दूसरे की महरम हैं, यहां निकाह की कोई सूरत नहीं। और ये महरमियत दोनों के दरमियान किस वजह से है? नसब की वजह से है या रिजायत की वजह से है? नसब की वजह से, कि एक ही मां बाप की बेटियां हैं तो नसब की वजह से इन दोनों में महरमियत आ रही है। इसी तरह फूफी और भतीजी है या खाला और भांजी है, इनमें भी महरमियत है, ये दोनों एक दूसरे पर हराम हैं। यहां दोनों में से जिसको भी मर्द फर्ज करें तो निकाह हराम है, तो मालूम है महरमियत आ रही है। बात समझ में आई? महरम किसको कहते हैं? वो औरत जिससे हमेशा के लिए निकाह हराम हो उसको महरम कहते हैं। तो दो बहनें भी एक दूसरे की क्या है? महरम। क्या माना? यानी दोनों में से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करो तो भी इनका निकाह आपस में जायज नहीं होता। भाई इसी तरह फूफी और भतीजी है और खाला और भांजी है, इनमें से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करो तो भी ये एक दूसरे की महरम है, यहां निकाह की कोई सूरत नहीं। और ये महरमियत किस वजह से है? नसब की वजह से। खाला और भांजी में नस्बी ताल्लुक है। खाला किसको कहते हैं? मां की बहन, मां की बहन। तो ये नसब के एतबार से इनमें रिश्ता है, एक खाला है और एक भांजी है। और इसी तरह फूफी और भतीजी में भी जो महरमियत है किस वजह से है? नसब की वजह से है, कि फूफी बाप की बहन है। भाई तो जैसे ये महरमियत नसब की वजह से होती है, इसी तरह रिजायत की वजह से भी महरमियत आ जाती है। आपने पढ़ा कि दूध पिलाने वाली औरत जो है रजिया के लिए महरम बन जाती है, उसके साथ अब उसके निकाह की कोई सूरत नहीं। और वो मुर्जिया की जो औलाद है वो इस दूध पीने वाले के भाई बहन बन गए, वो भी उसके महरम बन गए। और नस्बी एतबार से महरम बने या रिजायत से महरम बने? रिजायत दूध पीने की वजह से महरम बने हैं। तवज्जो है? तो लिहाजा जैसे नसब की वजह से महरमियत आती है, इसी तरह रिजायत की वजह से भी महरमियत आती है। बाज औरतें इंसान पर रिजायत की वजह से हमेशा के लिए हराम हो जाती हैं। भाई जी तो बात क्या चल रही थी, देखिए साहिब हिदाया क्या फरमा रहे हैं, वलव कानतिल महरमियत बैनहुमा बिसबबिर रजाई, कि अगर ये जो दो औरतें जिनका जमा करना हराम है, दोनों में से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करो, तो दोनों एक दूसरे के महरम हो, दोनों तरफ से निकाह की कोई सूरत ना हो, ये महरमियत चाहे नसब की वजह से हो चाहे रजायत की वजह से हो, दोनों का एक ही हुक्म है। अगर रजाई रिश्ता हो और महरम है तो भी इनको एक शख्स निकाह में जमा नहीं कर सकता। मसलन देखो, सूरत देखो, एक लड़की ने बचपन में एक औरत का दूध पिया तो यह औरत उसकी रिजाई मां बन गई, और इस मुर्जिया की जो औलाद है वो इसके रिजाई भाई बहन बन गए। तो अब ये जो दूध पीने वाली है और इसकी जो रिजाई बहन है, ये भी एक दूसरे की महरम है, यहां भी दोनों को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो निकाह की कोई सूरत नहीं है, तो इनको भी एक शख्स के निकाह में जमा करना जायज नहीं। जैसे बीवी की हकीकी बहन को कोई शख्स निकाह में उसके साथ जमा नहीं कर सकता, इसी तरह बीवी की रिजाई बहन को भी बीवी के साथ निकाह में जमा नहीं कर सकता, दोनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ ये महरमियत चाहे नसब की वजह से हो चाहे रजायत की वजह से हो, दोनों का एक ही हुक्म है। और इसी तरह भतीजी है और उसकी रिजाई फूफी है, यानी रिजाई बाप की बहन, तो जैसे हकीकी फूफी और भतीजी को जमा करना हराम था, इसी तरह रिजाई फूफी और रिजाई भतीजी को जमा करना भी हराम है एक शख्स के निकाह में। और जैसे हकीकी खाला और हकीकी भांजी को जमा करना हराम था, इसी तरह रिजाई खाला और रिजाई भांजी को जमा करना भी हराम है। यह माना है वलव कानतिल महरमियत बैनहुमा बिसबबिर रजाई, और अगर महरम होना इन दो औरतों के दरमियान रिजायत के सबब से हो तो तहरुमु, तो भी जमा हराम होगी, लिमा रवैना मिन कबलो, उस हदीस की वजह से जो हमने पहले रिवायत कर दी। वो जो हदीस आई थी भाई गुज़श्ता सबक के अंदर कि यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनर नसब, इस हदीस से क्या पता चला कि नसब की वजह से जो रिश्ते हराम, रज़ायत की वजह से भी वो रिश्ते हराम हैं, तो यही बयान कर रहे हैं। भाई देखिए यहां इबारत देख लीजिए, मेरी किताब में इबारत है तहरुमु लिमा रवैना, वैसे और हिदाया के नुस्खों में यहरुमु है और यहरुमु ही होना चाहिए, और इसके अंदर जमीर जो है वो लौट जाएगी जमा की तरफ, यहरुमु अय यहरुमुल जमउ, जमा हराम होगा। किस तरह इबारत बन गई, वलव कानतिल महरमियतु बैनहुमा बिसबबिर रज़ाई, और अगर महरम होना इन दो औरतों के दरमियान वो रजाअत की वजह से है तो यहरुमु लिमा रवैना मिन कबलु, तो भी जमा हराम होगा, उस हदीस की वजह से, उस दलील की वजह से जो हमने रिवायत कर दी, तो यहरुमु होना चाहिए भाई। लेकिन अगर ता है तो इसको फिर तो हर्रिमु पढ़ लें, क्या पढ़ लें, तो हर्रिमु, और अब यह मोनस का सीगा हो गया, अब इसके अंदर हिया जमीर इस महरमियत को राजे कर दें, आई तो हर रिमो, अगर ये महरमियत रजायत की वजह से है तो हर रिमो, तो ये भी हराम कर देगी, ये महरमियत भी हराम कर देगी, अल जमा मफूल को हजफ कर दिया, किसको हराम करेगी, जमा को, अगर ये महरमियत रजायत की वजह से है तो भी उन दो औरतों के जमा करने को ये हराम कर देगी। बात समझ में आ गई, आगे देखिए भाई, वला बास बि अन यजमा बैन इम्रातिन व बिन्ति ज़ौजिन कान लहा मिन कब्लु, और कोई हरज नहीं है कि जमा करे एक औरत को, व बिन्ति ज़ौजिन कान लहा मिन कब्लु, और इस औरत के पहले खावन से जो बेटी है। भाई देखिए सूरत ये, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है, इस औरत ने पहले जैद से निकाह किया हुआ था, और जैद की एक बेटी है वो किसी और बीवी से है, इस औरत से नहीं है जी। इस औरत से नहीं है, इस औरत से हो फिर तो ये इसकी सौतेली बेटी बन जाएगी, और सौतेली बेटी के साथ तो निकाह जायज नहीं अगर बीवी से सोहबत कर ले। बात समझ में आ गई, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मसलन एक शख्स की एक बीवी है और इस औरत ने जैद से निकाह किया था, और जैद की एक और बीवी से एक बेटी है, अब ये शख्स इस औरत के साथ इसके पहले खावंद की उस बेटी से भी निकाह करना चाहता है, तो दोनों को निकाह में जमा करना चाहता है, कहते हैं ये जायज है, दोनों को निकाह में जमा कर सकता है। किसको, एक औरत को और उसके पहले खावंद की बेटी है जो किसी और बीवी से है, किसी और से है, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला बस अभी अयजमा बई नम्र अति बिनती जो जिनका न लहा मिन कबलो, और कोई हरज नहीं है कि जमा करे एक औरत को, वह बिनती जो जिन कान लहा मिन कबलो और उसके पहले खावंद की बेटी को। भाई देखिए, वह बिनती जौजिन, बिंत मुजाफ है, जौजिन मुजाफुन इले, और जौज नकेरा है, और नकेरा के बाद आगे कान लहा मिन कबलू, ये पूरा जुमला आ रहा है, और नकेरा के बाद पूरा जुमला आए, चाहे जुमला फ़ेलिया हो या जुमला इस्मिया, वो अमूमन उसकी सिफत बनता है। तो यहां भी कान लहा मिन कबलू ये सिफत है जौज की। अब तर्जमा सुनो, जौज की सिफत बनाओ, और मौसूस सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूस से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं, तो जौज से पहले ऐसा का लफ्ज लेंगे, जौजिन कान लहा मिन कबलू, ऐसा खावन कान लहा जो उस औरत का था, मिन कबलू पहले, ऐसा खावन जो पहले इस औरत का था, यानी इस औरत का पहला खावन, इस औरत का जी, तो इसकी जो बेटी है इसको उस औरत के साथ जमा करना जायज है। तो कहते हैं वला बासा भी अयजमा बई नम्र अति हुआ बिनती जो जिन कान लहा मिन कबलू, और कोई हरज नहीं है कि जमा करे एक औरत को और उसके पहले खावंद की बेटी को, औरत को और उसके पहले खावंद की बेटी को, इसको जमा करने में कोई हरज नहीं। लिअन्नहु ला क़राबत बैनहुमा वला रज़ाअ, इसलिए क्योंकि इन दोनों के दरमियान ना तो कोई क़राबत है यानी नसबी रिश्ता है, वला रज़ाअ और ना रज़ाई रिश्ता है। बात समझ में आ गई। तो इस औरत और पहले खावंद की बेटी में कोई नसबी रिश्ता भी नहीं, ये इसकी अपनी बेटी नहीं है भाई, और रजाई रिश्ता भी नहीं है, तो लिहाजा यहां महरमियत नहीं है दोनों में, लिहाजा इनको जमा कर सकता है। वकाल जुफर रहमहुल्लाह ला यजूज, इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जायज नहीं है, यानी इन दोनों को निकाह में जमा नहीं कर सकता। लिअन्ना बनाता ज़ौजी लौ क़द्दरतहा ज़करन ला यजूज लहु तज़व्वुजु बिमरअति अबी, इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं जायज नहीं। वो फरमाते हैं यहां एक तरफ से हुरमत आ रही है, एक तरफ से हम कहते हैं नहीं, एक तरफ से हुरमत आना काफी नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हुरमत आनी चाहिए। यानी वो दो औरतें जिनको एक शख्स निकाह में जमा करना चाहता है, कौन दो औरतें हैं, एक औरत जिससे इसने निकाह किया है और इस औरत के पहले खावन से जो उसकी बेटी है किसी और बीवी से, इन दोनों को वो क्या करना चाहता है, जमा करना चाहता है। इमाम जुफर फरमाते हैं एक तरफ से हुरमत है लिहाजा जमा नहीं किया जाएगा। हमारे नजदीक एक तरफ से हुरमत काफी नहीं, बल्कि दोनों को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो दोनों तरफ से हुरमत होनी चाहिए
जी।
दोनों तरफ से। इधर देखिए, किसको जमा करना चाहता है आदमी, एक औरत के साथ उसके पहले खावंद की बेटी को। अब ये बेटी को जरा मर्द फर्ज करें तो इस पर यह औरत हराम है भाई। भाई जाब्ता बतलाया था ना कि उन दो औरतों को जमा करना हराम है कि जिनमें से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो दोनों आपस में निकाह हराम हो
जी।
तो यहां हम क्या करते हैं, उस जाब्ते को लागू करके देखते हैं कि दोनों तरफ से हुरमत आती है या नहीं आती। तो हमने पहले वो जो बेटी है खावंद की उसको मर्द फर्ज किया
जी।
जब उसको मर्द फर्ज किया तो ये जो औरत है ये तो इसके बाप की बीवी है
जी।
इस औरत ने पहले जैद से निकाह किया था ना, तो लिहाजा ये औरत इस बेटी के लिए बाप की बीवी है
जी।
क्या
बाप
की बीवी है, तो आपने बेटी को मर फर्ज किया तो इसका इस औरत से निकाह हराम है, क्योंकि अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, वला तन के हो मां न कहा आबा उकुम, जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किया है उनसे निकाह न करो। तो ये जैद की बेटी है और वह औरत तो जैद की बीवी है, तो वो बेटी के लिए यह औरत क्या बन गई, बाप की बीवी, और बाप की बीवी इंसान पर हमेशा के लिए हराम होती है। तो एक तरफ से तो महरमियत है, एक तरफ से महरमियत है, हराम है हमेशा के लिए। लेकिन अगर इस औरत को मर्द फर्ज करें और बेटी को उसी तरह मुअन्नस रखें तो ये उसकी सोतेली बेटी हो गई। और मुझे बताइए, सोतेली बेटी से निकाह की गुंजाइश है या नहीं। कुरान में आया था वरबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम, और वो तुम्हारी रबीबाएं जो तुम्हारी परवरिश में हैं, यानी वो सोतेली बेटियां, वो भी तुम पर हराम है। कब, من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم صحبت کر چکے ہو. معلوم ہوا اگر اس بیوی سے ابھی صحبت نہیں کی تو ربیبہ حرام نہیں, اس بیوی کو چھوڑ دے اور اسے کیا کر لے, نکاح کر لے تو کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا سوتیلی بیٹی سے نکاح کی صورت ہوتی ہے بھائی. تو لہذا یہاں پر بھی جب اس عورت کو ہم مرد فرض تصور کرتے ہیں تو یہ بیٹی جو ہے یہ اس کی سوتیلی بیٹی بنتی ہے, اور سوتیلی بیٹی ہمیشہ انسان پر حرام نہیں ہوتی, وہاں بھی نکاح کی گنجائش ہوتی ہے. جب اس سوتیلی بیٹی کی ماں جو اس شخص کی بیوی ہے اس سے یہ صحبت کر لے گا تو سوتیلی بیٹی تب حرام ہوگی, اس سے پہلے حرام نہیں. معلوم ہوا سوتیلی بیٹی میں محرمیت ہمیشہ نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا دیکھو دونوں طرف سے حرمت نہ آئی. توجہ ہے, پھر سنو, یہ عورت ہے اور اس کے پہلے خاون سے بیٹی ہے, ذرا اس بیٹی کو مرد فرض کرو تو اس بیٹی کا اس عورت سے نکاح جائز نہیں, کیونکہ یہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہے. اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے آبا کی بیویوں سے نکاح نہ کرو, تو ایک طرف سے تو پکی پکی حرمت آ رہی ہے. لیکن اگر اس کا برعکس کر لیں, اس عورت کو ہم مرد فرض کریں اور بیٹی کو اسی طرح مؤنث, تو اب یہ بیٹی اس کی سوتیلی بیٹی بن گئی. کیا بن گئی؟ اور سوتیلی بیٹی ہمیشہ محرم نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حرمت دونوں طرف سے نہیں آ رہی, حرمت ایک طرف سے آ رہی ہے. لہذا ہمارے نزدیک کسی عورت کو اور اس کے پہلے خاوند سے جو بیٹی ہے کسی دوسری بیوی سے, ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے. جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے تو حرمت آ رہی ہے, اگر بیٹی کو مرد فرض کریں گے تو اس پر باپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں ایک طرف سے محرمیت کافی ہے, ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. جبکہ ہمارے نزدیک صرف ایک طرف سے محرمیت کافی نہیں, محرمیت دونوں طرف سے ہونی چاہیے, اور یہاں دونوں طرف سے محرمیت نہیں ہے. لہذا ان دونوں کو ایک شخص نکاح میں جمع کر سکتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ لا يجوز, اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. لأن ابنت الزوج لو قدرتها ذکرا, اس لیے کیونکہ خاوند کی جو بیٹی ہے اگر آپ اس کو مرد فرض کر لیں, ذکرا, ذکر یاد رکھو مرد کی شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں اور یہ مرد کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. لو قدرتها ذکرا, اگر آپ بیٹی جو ہے اس کو مرد فرض کر لیں, لا يجوز له التزوج بامرأتي ابيه, تو اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے بامرأتي ابيه, اپنے باپ کی بیوی سے, کیونکہ یہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہے بھائی, تو اس کے لیے اس باپ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. قل, نہ ہم کہتے ہیں, امرأت الابی لو صورتها ذکرا, کہ جو باپ کی بیوی ہے اگر آپ اس کو تصور کریں ذکرا مرد, یعنی دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں اس عورت کو کیا فرض کریں مرد, تو وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہوئی, اور سوتیلی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ محرمیت نہیں ہوتی بھائی. قلنا, ہم کہتے ہیں, امرأت الابی لو صورتها ذکرا, کہ اگر یہ جو باپ کی بیوی ہے اس کو آپ مرد تصور کریں, جاز لہ التزوج بہذہ, تو اس کے لیے نکاح جائز ہے اس سوتیلی بیٹی سے. والشرط ان یصور ذلك من كل جانب, اور جمع کے حرام ہونے کی شرط یہ ہے, ان یصور ذلك من كل جانب, کہ دونوں طرف سے اس کا تصور کیا جا سکے, یعنی حرمت دونوں طرف سے ہونی چاہیے, صرف ایک طرف سے نہیں ہونی چاہیے. جمع کرنا کب حرام ہوگا؟ شرط یہ ہے کہ دونوں جانب سے حرمت آ رہی ہو, دونوں جانب سے عدم جواز آ رہا ہو. دو عورتیں ہیں, دونوں میں سے ہر ایک کو آپ باری باری مرد فرض کریں تو دونوں صورتوں میں نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے. عدم جواز دونوں طرف سے آنا چاہیے, صرف ایک طرف سے نہیں آنا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ شرط, اور یہ جمع کے حرام ہونے کی شرط یہ ہے, اَن يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِن كُلِّ جَانِبٍ, کہ وہ جو عدم جواز ہے اس کا تصور کیا جا سکے ہر جانب سے, یعنی دونوں جانب سے, پھر ہی جمع حرام ہوگا, ورنہ جمع حرام نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں بھائی ایک اور قیمتی فائدہ یاد رکھنا, ایک اور قیمتی فائدہ, بعض علماء نے جمع کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نکاح سے مانع ہیں, کون کون سی چیزیں نکاح سے مانع ہیں. مثلا دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں, تو معلوم ہوا جمع مانع ہے. اسی طرح نسبی رشتے بعض اوقات مانع بن جاتے ہیں, جیسے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات سسرالی رشتے مانع بن جاتے ہیں, اپنی ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہے, حرام. بعض اوقات رضاعی رشتے حرام بن جاتے ہیں. دیکھو رضاعی ماں انسان پر کیا ہوتی ہے, حرام. تو وہ چیزیں جو نکاح کے لیے مانع بنتی ہیں ان کو بعض علماء نے جمع کیا ہے. بھائی یہ لکھ لیجئے بھائی, یہ آپ کو کام آئیں گی. بھائی لکھیے بھائی, کہتے ہیں المانع من النکاح خمسۃ اوجہ. المانع من النکاح خمسۃ اوجہ. المانع من النکاح خمسۃ اوجہ. النسب, النسب والسبب, والسبب والجمع, والجمع وحق الغير, وحق الغير والدين, والدين. دیکھو یہ پانچ چیزیں بعض علماء نے ذکر فرمائی ہیں. دیکھیے عبارت پھر دیکھ لیجئے, المانع من النکاح خمسۃ اوجہ. وہ چیزیں جو نکاح سے مانع ہیں خمسۃ اوجہ, وہ پانچ ہیں بھائی, پانچ قسم کی ہیں. النسب والسبب, ایک نسب ہے, والسبب اور ایک سبب ہے, والجمع اور ایک جمع ہے, وحق الغیر اور ایک حق الغیر ہے, والدین اور دین ہے. بھائی بھائی دیکھیے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو نکاح سے مانع ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں بھائی. ایک نسب ہے, بعض عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں, جیسے مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں وغیرہ ہیں. اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں, اور سبب دو ہیں, رضاعت اور سہوریت, یعنی سسرالی رشتہ. سہوریت سواد کے ساتھ ہے بھائی. رضاعت کی وجہ سے بھی بعض عورتیں حرام ہو جاتی ہیں, اور سسرالی رشتہ ہو تو وہ بھی عورتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں, ساس وغیرہ بھائی. اور جمع, بعض عورتیں جمع کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں, جیسے دو بہنیں ہیں, یا وہ عورتیں جو دو بہنوں کے درجے میں ہیں, جیسے خالہ اور بھانجی, پھوپھی اور بھتیجی, یہ دو بہنوں کے درجے میں ہیں تو ان کے بھی جمع حرام. یا اسی طرح چار سے زیادہ عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا, یہ بھی کیا ہے, حرام ہے بھائی. اور اسی طرح کبھی عورت حرام ہوتی ہے غیر کے حق کی وجہ سے, جیسے غیر کی بیوی, غیر کی بیوی. جب ایک عورت سے ایک شخص نے نکاح کیا ہوا ہے تو اس عورت کے ساتھ اب کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا, یہ عورت حرام ہے باقی سب پر, غیر کے حق کی وجہ سے, اس کے خاوند کے حق کی وجہ سے. ہاں اس کے خاوند کا اگر انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے پھر اس عورت سے نکاح جائز ہو جائے گا. تو یہ عورت حرام ہے باقی سب پر, یہ جو غیر کی منکوحہ ہے, غیر کے حق کی وجہ سے بھائی. اور اسی طرح کبھی حرمت جو ہوتی ہے وہ دین کی وجہ سے آتی ہے, جیسے آتش پرست بھائی. اور اسی طرح وثنیات, جو بت پرست عورتیں ہیں بھائی, آپ نے پڑھا ہے کہ غیر مسلم عورتوں میں سے جو اہل کتاب ہیں ان سے نکاح جائز ہے مسلمان کے لیے, لیکن اگر وہ آسمانی دین کو نہیں مانتی وہ غیر مسلم عورت, مثلا آتش پرست ہے, مجوسی ہے یا بت پرست ہے, تو ان سے مسلمان کے لیے نکاح جائز نہیں, نکاح بھی نہیں کر سکتا, اور اگر اس قسم کی باندی ہو تو اسے صحبت بھی جائز نہیں ہے. صحبت بھی صرف اس باندی سے جائز ہے جو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو. جو باندی آتش پرست ہے یا بت پرست ہے اس کے ساتھ جیسے نکاح جائز نہیں, اسی طرح آقا کے لیے اس سے صحبت بھی جائز نہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو نکاح سے مانع ہیں, تو ان کو علماء نے اکٹھا فرمایا. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.